राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा ताई गौर प्रेमानंदे
जय हो
श्री श्री जावट धाम की श्री किशोरी कुंड धाम की श्री राधा ब्रज किशोर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम महाराज जी अभी आपको कुछ बोलना नहीं है अभी आपको एकदम शांति रखना है ताकि मैं कुछ बोल पाऊं इस जगह के बारे में आपकी कृपा से जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं उसका नाम है जावट जाव का अर्थ होता है महावर यानी कि आल्टा आल्टा होता है ना आप लोग अपने पैरों को लगाते ना लेडीज पता है ना कैसे लगाते हैं उसको ऐसे पैरों को लगाते हैं ना लाल रंग का खास करके यूपी बिहार में लगाते हैं पंजाब में भी लगाते हैं उसको आलता तो उसको महावर कहते हैं महावर या जाव कहते हैं वो फोटो देख रहे हैं आप उधर देखो सब लोग जो जो प्रभु जी बैठे ना उसके पीछे आप यहाँ से दिख रहा है वो ये वॉल में है हाँ उधर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के पैर को महावर लगा रहे हैं तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर लगाया था राधा रानी के पैर को ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान राधा रानी का महावर मिट गया था तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको यहां पर महावर लगाया था उसका मंत्र हम पढ़ेंगे हाँ इस संके जावक वट या जावट यहाँ का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे सब लोग बहुत शक्तिशाली होता है बहुत कृपा होती है उसके अंदर राधा पादतलाद यत्र जावकः स्खलितो भवत् यस्माद् जाववटम् नाम विख्यातम पृथ्वीतले राधा पादतलाद यत्र जावकः स्खलितो भवत् यस्माद् जाववटं नाम विख्यातं पृथ्वीतले। इसका अर्थ है यहाँ पर जावकः स्खलितो भवत्, यानी जावक जो है पैर का लगाया हुआ मिट गया था। राधा पादतलाद, राधा के चरणों का जावक यहाँ मिट गया था। तो यस्माद् यानी इसी जाववट के नीचे कृष्ण भगवान ने वो महावर बनवाया और जाववट नाम से पृथ्वी तल पर ये स्थान प्रसिद्ध हो गया, विख्यातम पृथ्वी तले। तो वर्णन ऐसा आता है कि राधा रानी के दो चरण कमल अपनी गोद में लेकर पूरे एकाग्रता के साथ विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, आंखों को ना मिंचते हुए विदाउट ब्लिंकिंग द आई, श्याम सुंदर जी ने राधा रानी के चरणों पर जावक, श्याम सुंदर जी डेकोरेट्स राधा रानी लोटस फीट विद जावक एंड एंकल बेल्स, उसके बाद में पायल भी पहनाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं। हरी बोल। बहुत सुंदर दृश्य है ये, ऐसा दृश्य जो है वो केवल ब्रज में ही मिलता है, जहाँ ऐश्वर्य भाव समाप्त होकर केवल प्रेम और माधुर्य प्रकट होता है उसी जगह भगवान अपने भक्तों के चरणों के तले आ जाते हैं। बाकी सब जगह जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ भगवान भगवान बनकर सिंहासन में बैठते हैं, सब उनके चरणों की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही ऐश्वर्य समाप्त होकर वो प्रेम माधुर्य के स्थल पर आ जाते हैं तो फिर वो भक्तों के चरणों में आकर उनके चरणों की सेवा करते हैं। इसलिए हम इस जगह पर बैठे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र स्थान है ये जो कुंड आपके पीछे है ना, बड़ा विशाल, देखो कहाँ तक गया ये कुंड। ये जो बीच में झाड़ी है ना, इसके पीछे भी कुंड का जल है, ऐसे ही सागर जैसे कुंड यहाँ पर हुआ करते थे। ये किशोरी कुंड है, यहाँ पर जो कंस कन्या बन गया था ना, तो 6 महीने तक आपको पता है ना कहानी, वो सब लोग बड़े होशियार हैं। संक्षेप में, जब नंद महाराज और वृषभानु महाराज गोकुल रावल से यहाँ आ गए तो कंस के सेनापति आए, मैंने कल बताया ना हाउ बिलाऊ, वो पत्थर बन गए, फिर कंस खुद आया, फिर वो कन्या बन गया और बहुत संकोच में आया क्योंकि यहाँ पर भी संकोच, वापस जाने पर भी संकोच, कहाँ जाए, लेकिन यही रहा वो। और सब गोपियों ने उनसे 6 महीने तक कंडे लिपवाए, चक्रवर्ती सम्राट। हाँ वो पूरा पता है ना वो कैसे होता है, गाय तो डालती है गरम गरम, फिर उसको इकट्ठा करना है, फिर उसमें ब्रज रज को मिलाना है, फिर उसके पैडिस बनाना है और ऐसे ऐसे गोल बनाना है, फिर उसको दीवार पे पेड़ पे पहाड़ पे सब सुखवाना है, सूख गया तो उसको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके टोकरी में डालना है, टोकरी सर पे रखना है और फिर घर पहुंचना है, वहां जाके वो उसका एक घर होता है, वो रखने का एक घर होता है। आप देखा ऐसे बड़ा घर बनाते हैं, उसी का बनाते घर, उसमें वो सब जमा करते हैं साल भर के लिए, बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं उसको भी और फिर रोज उसमें भोजन बनाते हैं। तो ये सारे काम कंस से गोपियों ने ताली पिटवा पिटवा के 6 महीने तक करवाए, देखो हमारे चक्रवर्ती सम्राट देखो, हाँ सारा विश्व डरता है इनसे, सारे राक्षस इनके वश में आ गए हैं, चारों दिशाओं में जाके विजय करके आए हैं और यहाँ पर आकर कन्या बन गए। इसमें एक थोड़ी सी बात ऐसी है जो आपको समझाना जरूरी है, आप लोग में से कितना लोग गोपी बनना पसंद करेंगे, आप लोग नहीं पसंद करेंगे? अरे हम सब लोग वैसे ही सब लोग स्त्री हैं, हाँ बिलीव मी, हम सब लोग स्त्री भाव हैं एक्चुअली, जो भोग्य वस्तु होती है उसको स्त्री कहते हैं, हम भी भगवान के लिए भोग्य हैं यानी कि एंजॉयबल बाय द लॉर्ड। कुछ लोग स्त्री शरीर में है, कुछ लोग पुरुष शरीर में, इतना ही फर्क है, लेकिन सब लोग भगवान के लिए ही, उनके ही आनंद के लिए बनाए गए। तो इन प्रिंसिपल तत्वतः हम लोग स्त्री हैं सब लोग, ये तो छोड़ना है यहाँ पर आके, हम समझते कि हम पुरुष हैं, आप समझते कि आप स्त्री हो, कोई समझते हम जवान है, कोई समझते बूढ़े हैं, ये जो है ना ये शरीर का घमंड है, इसको छोड़कर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी पे अटैच रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सब लोगों को गोपी बनने के लिए आतुर रहना चाहिए अगर भगवान की इच्छा हो तो। कंस को बिना कोई प्रयास के अपने आप गोपी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ था, है कि नहीं? गोपी बना ना वो इधर आके, क्या काम किया? गोपियों का काम किया ना उसने, कंडे लिपना, दूध निकालना, सब कुछ काम कौन करता है? गोपी तो करती है। बिना प्रयास सहजता से ही उसको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ था, गोपी की सेवा भी प्राप्त हुई। लेकिन बेचारा 6 महीने तक रोता रहा, सोच रहा था ये गलत हो रहा है सब कुछ। और गोपियां भी वही काम कर रही थी, बड़े मजे से आनंद से गीत गाते हुए कर रही थी। तो प्रॉब्लम कहाँ था? भाव, चेतना का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इज इट कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा भाग्य प्राप्त होने पर भी अगर हम दुखी ही रहेंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं? तो गोपियां आराम से गोपी बनकर कंडे लिप रही हैं और ये दुरोरों के कंडे लिप रहा है और बार बार रोज विनती कर रहा है, बचाओ बचाओ, मुक्त करा दो। फिर 6 महीने के बाद में यहाँ पर किशोरी राधा रानी से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने बहुत डांटा है उनको कि भ्रष्मानु महाराज ने बहुत विनती किया उनको कि अभी कंस जो है ना बहुत नम्र हो गया है, बहुत विनती कर रहा है, रो रहा है बेचारा, कर दो, माफ़ कर दो उसको। तो उंगलियाँ लड़ा के उन्होंने डांटा उसको बहुत और कहा अभी किशोरी कुंड, ये मेरा कुंड है, यहाँ पर मैं विहार करती हूँ, इसमें आप स्नान करो, मतलब डुबकी लगाओ, आपको पुनः पुरुष शरीर प्राप्त होगा और दोबारा लौट के आओगे तो परमानेंट कन्या ही बनोगे। अभी तो मैं उसको विश्राम दे रही हूँ 6 महीने के बाद में उस लीला को। तो कंस ने यहाँ पर छलांग लगाई है, कंसनी गोपी, हाँ मोटल्ली गोपी कहते हैं उसको, और उसको सब गोपियाँ चिढ़ा जाए, धमदल्ली, ए गोपल्ली, मोटल्ली, ऐसे बहुत चिढ़ाते हैं उसको। मतलब यू नो ना हाउ फनी द लेडीज एंड मैन आर हियर। तो उन्होंने बहुत उसका मजाक उड़ाया, बहुत उसकी हंसी उड़ाई। वैसे तो वसुदेव नंद महाराज सब जाते थे, नंद महाराज वृषभानु महाराज टैक्स चुकाने के लिए, डरते थे कंस के बहुत। वही कंस यहाँ पर स्त्री बन गया है तो कितना उसकी कितना संकोच हो गया उसको, जस्ट इमेजिन। ऐसे कहते हैं जिस व्यक्ति को बहुत मान मिलता है ना, सम्मान मिलता है, उसको अपमान नहीं सहन होता है, बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए। टू हुम मच रिस्पेक्ट इज गिवन इवन लिटिल इंसल्ट इज वेरी पेनफुल। ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, बड़े बड़े राक्षसों को उसने नौकर बनाया था अपना, और यहाँ पर आकर कन्या बन गया और सिंपल सी गंवार, मतलब उसके लिए गंवार लगने वाली लड़कियाँ उसको तालियां पीट कर हंस रही है, ताने दे रही है, कितना कष्ट हो गया रहेगा उसको। तात्पर्य कहने का ये है कि अगर कंस बुद्धिमान होता तो वो अपना भाग्य समझता कि मैं यहाँ पर आकर कन्या बन गया, यही रह जाऊँगा, अभी क्या करना है राज्य करके, इतने बुरे लोगों का संग करके क्या करना है, ऐसा उसके मन में विचार आते। लेकिन वो नहीं आए और जैसे ही छलांग लगाई उसको पुनः पुरुष शरीर प्राप्त हो गया और वो गीले वस्त्र से यहां से मथुरा तक भागा। क्यों? अगर कहीं किशोरी का मन बदल गया तो फिर वापस कन्या बनना पड़ेगा, इसलिए वो मथुरा तक भागा है यहां से। तो ये किशोरी कुंड है जहां पर राधा रानी विहार करती है, उनका प्राइवेट कुंड है, लेकिन उन्होंने कंस को यहां पर स्नान करने का भाग्य दिया और पुनः शरीर प्राप्त करके मथुरा चला गया। ठीक है, तो ये किशोरी कुंड है। उसके आगे आप जाएंगे, आपको ले जाएंगे प्रभु जी, वहाँ पर एक थोड़ा सा चढ़ना है, वहाँ पर जटिला और कुटिला का घर है। अरे मैंने तो बताया नहीं है पर ये जगह कौन सी है, ये राधा रानी का ससुराल है। आप अभी समझो आपके कोई फ्रेंड है तो उसके घर में आप आराम से कभी भी जा सकते हो, लेकिन उसके ससुराल में जब चाहे जा सकते हो क्या? बहुत सारा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो राधा रानी के बरसाने में आपने इतना दिन निवास किया तो राधा रानी आपको ससुराल भी बुला रही है, आ जाओ ये भी देख लो ससुराल का लीला मेरा। तो राधा रानी का धाम भी उत्कट है बहुत, वहाँ पर भी वो चटपटी लीला होती है, वो कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी बनते हैं, कभी बैरागी बनते हैं, कभी योगी बनते हैं, कभी कंगन बेचने वाले बनते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाली, कंगन बेचने वाली, कभी मेहंदी निकालने वाली, कभी भविष्य देखने वाले साधु बन के आते हैं, क्या क्या, कभी मालिन ढाड़ीन फूल माला बेचने वाली, कभी झाड़ू लगाने वाली, कुछ भी बनकर आते हैं। पर्पज क्या है उसका? राधा रानी को मिलना है। जो फोटोग्राफ है उसमें वो सितार सिखा रहे हैं उसको, वीणा सिखा रहे हैं, वीणा सिखाने के लिए आए हैं गोपी बनकर, और कई प्रकार के भेष बदलते हैं वो, तो वो भी चटपटा है बहुत, लेकिन यहाँ का चटपटापन जो है ना वो उससे भी आगे है। तो मैंने आपको वहां कथा बताई ना, ब्रह्मा जी के लीला में सबका विवाह सबसे हुआ, तो सब गोपों के साथ में सबका विवाह हुआ, तो उसमें राधा रानी का विवाह अभिमन्यु गोप से हुआ। उनकी माता का नाम था जटिला, इसका मतलब क्या होता है? जटिल यानी बहुत मुश्किल, टू डील विद, शी इज वेरी जटिल, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, जस्ट लाइक मदर इन लॉ, इट्स वेरी जटिल। और उसकी नणंदी का नाम क्या था? कुटिला। कुटिला मतलब क्या? कपटी, क्रुकेड, यू नो, कनिंग। तो क्या फर्स्ट क्लास नाम है ना, जटिला और कुटिला। तो दोनों यहाँ पर रहते थे, और वृषभानु महाराज ने जब अपना कन्या का विवाह अभिमन्यु से करवाया तो यहाँ पर बड़ा महल बनवाया, वो स्टील के ऊपर, तो वही घर है उनका, जटिला कुटिला का घर जो है वो वृषभानु महाराज ने बनवा दिया है। और जो राधा रानी की नानी है ना, वो कहाँ रहती है? मुखारा, मुखारा नाम का गांव है, मुखाराई, मुखाराई नाम का गांव है, क्योंकि राधा रानी की नानी का नाम मुखारा देवी है। तो कहते राधा रानी विवाह के बाद हर रोज अपनी पोती को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आती थी, एवरी सिंगल डे। और मुखारा किधर है? गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड है, उसके आगे एक दो किलोमीटर के आगे मुखारा गांव है, और वो मुखारा गांव का मुखाराई गांव है, मुखाराई, और उनका नाम मुखारा देवी है। उनकी विशेषता यह है कि वो जब राधा रानी का जन्म हुआ ना बहुत दिन के बाद, वो तो बड़ी बुजुर्ग बुढ़ी थी और उनकी बेटी भी वयस्क हो गई थी, लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो उसको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। उसने क्या किया होगा? उसने ना बैलगाड़ी का पड़ा हुआ चक्र जो है ना उसको उठाया उसने, और वो गोल गोल घुमाकर डांस करने लगी। फिर उसने उसको नीचे रखा और उसके आरे पर सब दीपक लगाए। हमने कैसे दीपक लगाए थे उस दिन? वैसे हर एक स्पोक के ऊपर दीपक लगाए तो कैसे दिखता होगा वो? ऑल फोर साइड्स, फोर डायरेक्शंस, और दीपक लगाकर फिर उसको उठाया और फिर गोल गोल घुमाकर नृत्य किया। उसका नाम क्या है? चरकुला नृत्य, जो चक्र के ऊपर किया जाता है। तो ब्रज का एक फेमस डांस में से एक है वो, चरकुला नृत्य। उसकी प्रतियोगिता भी होती है बहुत सारे स्कूल में, और जगह जगह होती है, गोवर्धन में होती है, कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में, स्कूलों में होती है वो, चरकुला नृत्य। क्या बताया मैंने? हाँ, तो मुखारा देवी उसके लिए फेमस है, वो नृत्य वहीं शुरू हुआ था, और आज भी राधाष्टमी के दिन मुखाराई गांव में वो नृत्य होता है, और राधा रानी का जन्म वहां मनाते हैं अपने तरीके से जैसे मुखारा देवी ने मनाया था। तो पूर्णमासी ने ये राधा रानी का विवाह अरेंज किया था वृषभानु महाराज से और इनसे बात करके, और कहीं पर भी राधा रानी के ससुर जी का वर्णन नहीं आता है, सासू और नंदी और राधा रानी इनका ही वर्णन आता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत चटपटी लीलाएं हैं, बहुत समय कम है इसलिए बताने के लिए, फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ से भी राधा रानी नंदगांव जाती थी कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए, तो वृषभानु महाराज की पत्नी कीर्ति देवी का स्पेशल कनेक्शन था जटिला के साथ। और जटिला वैसे भी ना बहुत बुढ़ी थी, थोड़ी सी बहरी भी थी, और थोड़ी दृष्टि भी उसकी कमजोर थी, उम्र वाली थी ना बहुत। वो उसका काम क्या था? वो हमेशा महल के दरवाजे पे बैठी थी, बैठती रहती थी, और उसका काम ही था कि कहीं भी राधा और कृष्ण मिलना नहीं चाहिए, बस यही उसका काम था। तो यशोदा मई उनको क्या कहते हैं ना, टू कीप हर इन गुड बुक्स, उसका भाव और फ्रेंडशिप बनाए रखने, बार बार उसको गिफ्ट भेजा करती थी ताकि वो कहीं गुस्से में आकर, थोड़े से कड़क स्वभाव की थी वो, उग्र स्वभाव की थी, तो कभी भी अगर समझो गुस्सा आ गया तो बंद कर देगी। तो राधा रानी का निरंतर वहाँ पर पहुँचना जरूरी है नंदगांव में, इसलिए रेगुलरली उसको बॉक्स भर भर के गिफ्ट भेजती थी। मराठी में क्या कहते हैं? पेटारा, ट्रंक्स। तो एक दिन यशोदा माई ऐसे ही भेजने के लिए बना रही थी, अपना बॉक्स रेडी कर रही थी, अलंकार भर रही थी, वस्त्र भर रही थी, और सब कुछ भर के रखा उसने। तो कृष्ण आए वहाँ पर, पूछा क्या कर रहे हो भैया? तो ये तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ। तो उनको कुतूहल हुआ, तो बार बार पूछने लगे, तुम नहीं बताया उनको, उनको जो जाओ खेलने जाओ, तुम यहाँ नहीं आना। तो उनका कुतूहल बढ़ गया, और तो बाद में उन्होंने पता किया दूसरों से कि ये जो बॉक्स है ना, ये भर के अभी जावट जाएगा अभिमन्यु के माँ के लिए। तो वो अपने दोस्तों के साथ गए, पिटारा खुलवाया, सब सामान निकाला और खुद जाके बैठ गए। और यशोदा माई ने बाद में वापस कंफर्म नहीं किया कि क्या है, मतलब सर्वेंट को बोल दिया कि वो कमरे में रखा है, वो पिटारे को तुम जावट में भेज दो माताजी के लिए। तो उन्होंने लॉक किया और उठा के, अच्छा उन्होंने ऐसा याद आया मुझे अभी, उन्होंने अभिमन्यु को खास बुलाया कि ये बहुत ही कीमती वस्तु इसके अंदर है और मुझे इच्छा है कि ये केवल आपके माँ के हाथ में पड़ना चाहिए। तो अभिमन्यु आप खुद आ जाओ। तो अभिमन्यु को खुद बुलाया और बेचारा अभिमन्यु खुद उठा के ले गया उसको। पहले तो आप हल्का था वो, लेकिन जब कृष्ण भगवान अंदर थे वो ज़्यादा भारी हो गया और बड़े श्रम से उसने पहुँचाया मैया के पास। तो मैया बोली जाओ राधा रानी के कमरे में छोड़े आओ, क्योंकि और किसी के हाथ लग जाने चाहिए। तो वहीं पहुँचना था उसको, तो वहाँ पहुँच गया। फिर वो जैसे ही सर्वेंट जो ललिता विशाखा किशोरी सब आए, उन्होंने खुलवाया बंद करके, बहुत कीमती वस्तु है इसलिए बंद करके खुलवाया, तो उसमें से कृष्ण निकले। तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया अंत कक्ष में जाकर। तो एक बार कृष्ण यहाँ पर, कृष्ण बहुत ही व्याकुलता से आते थे कृष्ण को उनको मिलने के लिए, क्योंकि अभी विवाह हो गया है, पत्नी अभिमन्यु है, जटिला रास्ते में बैठी है, कुटिला बार बार स्पाइंग कर रही है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर मिलने। तो एक बार आई तो मुलाकात नहीं हुई। तो कहते हैं रात भर एक बेरी के पेड़ पर बैठकर कोयल की आवाज़ करते रहे। बार बार राधा रानी बाहर आती तो ये पूछती कहाँ जा रही हो, चलो अंदर जाओ। तो बार बार कोयल की आवाज़, बार बार रात भर कृष्ण भगवान रोए, लेकिन राधा रानी की मुलाकात नहीं हुई, वे घर चले गए। उस पेड़ का नाम भाई सब लुप्त हो गए स्थान, अभी बेरिया कहते हैं उसको, बेर का पेड़। फिर एक बार जब मिलने आए तो राधा रानी ना कृष्ण पर ही नाराज थी बहुत, तो मिलना मुमकिन था फिर भी उसने मिलने का इनकार कर दिया। कृष्ण ने बहुत मनाया उनको लेकिन नहीं मान गई वो। तो कहते हैं कि कृष्ण इतने दुखी हो गए तो एकदम विरक्त हो गए कि राधा रानी अगर नहीं है, उनकी कृपा नहीं मिल रही है, तो वैराग लेना ही अच्छा है। तो कहते हैं कृष्ण भगवान कैलाश गए और शिव जी से उन्होंने सब वो मांगे, क्या कहते हैं उसको, ट्री बार्क, क्या कर, व्हाट इज कॉल्ड, वलकल मांगे, डमरू मांगा, वो सब दंड मांगा उनसे। तो वो पूछ रहे क्या हो गया, नहीं नहीं वो आप नहीं समझेंगे, वो मुझे अभी संसार में कुछ रुचि नहीं बची, इसलिए वो बैरागी बन गए, मुझे जाना है अभी, मुझे संसार में कोई रुचि नहीं है। तो वो बैरागी बनकर फिर जावट आए और जावट पर उन्होंने भिक्षा मांगा सन्यासी के रूप में। तो जटिला बोली जाओ सन्यासी को दे दो दक्षिणा। तो वो दे आए, वो बोले मैं नहीं जाऊँगी, वो नाराज थे ना वैसे ही। तो उन्होंने ना, क्योंकि क्या हुआ, जब बैरागी आए ना तभी जटिला और कुटिला गौशाला में काम कर रहे थे और उन्होंने स्नान वान नहीं किया था, गोबर के कंडे बना रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज जी क्षमा करना, वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है, अब तक स्नान नहीं किया हमने, हमारी बहू आपको देगी। और बहू को चिल्ला के बोला अरे बहू को दे दो, तो बहू ने मना कर दिया। तो फिर वो बड़ी परेशान हो गई कि अगर हमें, हमने सन्यासी को दान नहीं दिया तो हमारी गौओं के लिए, हमारी कन्या के लिए, हमारे बेटे के लिए, सबके लिए अशुभ हो जाएगा ये। तो वो ऐसे ही हाथ भरे हुए गोबर के लेके अंदर गई और राधा रानी को मनाया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, आप जाना चाहिए। तो बड़ी ही ऐसे क्या कहते हैं रिलक्टेंटली, हाँ क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इच्छा ना होते हुए भी राधा रानी आती है, हाँ ना खुशी से धान्य लेके आती है, बहुत सारा कुछ लेके आती है। तो ये बैरागी बोलता है मुझे इस धान्य बनने में रुचि नहीं है। तो वो और उसको नाराज हो जाती है वो, तो फिर मुझे क्यों बुलाया फिर आपने, क्या बहुत ही भिक्षा दे बोल रहे हो आप। तो कह रही है आप इस थाली में आपका मान मुझे दे देना, समझ में आपको आया। जो नाराज हो गए ना वो मान करके बैठे ना, तो वो मान का दान देना। तो राधा रानी हंस गई तुरंत और जैसे ही मान दे दिया उनको तो समझ गई कि कृष्ण बैरागी बनकर आए हैं। ऐसे एक बार ब्राह्मण बनकर भी आए थे इसी लीला के अंतर्गत, तो समय भी उन्होंने ऐसे ही मान की मांग की थी। उसके बाद में एक बार राधा और कृष्ण ऐसे, कृष्ण बहुत ट्रिक करके उनके कमरे में गए और कमरा बंद करके दोनों अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। उतने में कुटिला आई और कुटिला ने देखा कि कृष्ण की आवाज़ आ रही है, राधा की भी आवाज़ आ रही है और दोनों बात कर रहे हैं। बाहर से कड़ी लगा दिया, अभी मुझे अभिमन्यु को लाना है और मैया को लाना है और रंगे हाथ इनको पकड़वाना है। तो वाक लेके आ गई और धाड़ करके दरवाजा खोल दिया। तो जैसे आप जानते हैं ना, समझे आपको मक्खी को उड़ाना है, तो कैसे मक्खी उड़ती, देखो आपका वहां पहुंचना लव मात्र डिफरेंस होता है, उसके पहले मक्खी उड़ जाती है। बंदर को आपको पकड़ना है, बंदर वही आपके सामने, लेकिन आप गए तो एक क्षण के पहले भाग जाता है। वैसे जैसे दरवाजा खुला उसके एक क्षण पहले कृष्ण भगवान वहां से भाग के खिड़की से कूद गए, लेकिन मुरली वहां भूल गए। तो कुटिला बोले देखो वो तो भाग गया लेकिन मुरली है ना यहाँ पर, है ना इसका प्रूफ। तो राधा रानी कहती है कि वो क्या हुआ माता जी, आज जावट में मुरलियों की बरसात हुई इसलिए ये मुरली यहां पर आई है। तो ये बात कृष्ण ने जब समझी सुनी ना, तो कृष्ण ने सब जगह मुरली पैदा किया, सबके घर पे मुरली, आंगन में मुरली, घर में मुरली, किचन में मुरली, सब जगह मुरली, सब गोपियों के घर में मुरली, जहां जहां गई वहां मुरली। तो क्या कहेंगे अभी कुटिला, कुछ नहीं कह सकती। दूसरी बार ऐसे ही उनकी आवाज सुनी तो वो खुद ही धाड़ करके अंदर गई, तो क्या देखा, राधा रानी काली देवी की पूजा कर रही है। कुछ ही क्षण में वो काली देवी बन गए हैं, और वो जो बातें हो रही थी प्रेम की तुरंत आरती और घंटी में बदल गई। तो भी क्या बोलेगी कुटिला। ऐसे एक बार पता चला कि किसी वन में राधा कृष्ण को मिल रही है, तो यहां से अभिमन्यु झाड़ू ये डंडा वंडा लेकर गए, कुटिला जटला ठहर ठहर, बुढ़ी कुटिला जा रही है धीरे धीरे। तो ये बहुत एक देवी के मंदिर में बात कर रहे हैं छुप छुप के, अंबिका देवी के मंदिर में। तो ये जैसे ही आ रहे हैं तो हल्ला मचा ना, वैसे थोड़ी चुपचाप आ जाए कोई चोर, ए चोर पकड़ो, कैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आवाज आती ना, तुरंत कृष्ण अंबिका बन जाते हैं और वो आरती करने लगती है उनकी। तो कृष्ण जब देवी देवी बनते हैं तो थोड़ी देर को राधा रानी को बहुत आश्चर्य होता है, अरे अचानक क्या हो गया। तो कहते पीछे देखो। पीछे देखने पर पता चलता है कि क्या है, तुरंत आरती करने लगती है। तो फिर आरती पूरी होती है और देवी भी अब देवी की आरती हो रही है, तो तुरंत वो जटिला कुटला भी दंडवत करते हैं, अभिमन्यु प्रणाम करता है। उतने में देवी बोलने लगती है कि हमने सुना है कि तुमने राधा रानी को मथुरा भेजने का प्लान किया है, क्योंकि तुम बहुत सारे शक्की औरत आदमी हो, बहुत शक करते हो उसके ऊपर, संशय करते हो। लेकिन मैंने अभी सुना है, मैं आपको ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि कंस के सैनिक अभी अभिमन्यु को पकड़ कर कैद करके ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो तुरंत मैया डर गई, बहन भी डर गई, अभिमन्यु टेंशन में आ गया। तो उन्हें देवी को पूछा क्या करना चाहिए, कहते अभी कभी वादा करो कि तुम ब्रज से राधा रानी को बाहर नहीं भेजोगे, तब कंस के सैनिक वहाँ ही रुक जाएंगे। तो तुरंत वहाँ वादा करते हैं कि कभी भी हम राधा रानी को ब्रज के बाहर नहीं भेजेंगे, तथास्तु, चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक स्थान है जो अभी पता नहीं कहाँ पर है, नष्ट हो गया रहेगा, कुटिला दूषण स्थान। क्या स्थान है देखो आप, वहां पर कुटिला बैठकर दिन रात गालियां बकती रहती थी, वो कुटिला दूषण स्थान हो गया। फिर इधर राधा रानी के जगह पर एक सुंदर वट वृक्ष था, तो उधर ललिता देवी ने एक बार झूलन यात्रा का उत्सव अरेंज किया था, तो जानबूझकर ना झूला बहुत ऊंचा बनाया गया था। तो सब लोग देख रहे हैं, अभी राधा रानी अकेली थी और सखियां अभी तक आई नहीं थी, राधा रानी आ गए, कृष्ण भी आ गए, बाकी लोग कोई नहीं आए थे। तो राधा रानी कहा मुझे झूले पर बैठना है, कैसे बैठूंगी। तो कृष्ण ने उनको अपने हाथ से उठाया झूले में बिठाने के बहाने, लेकिन ऊपर उठाकर उनको आलिंगन दिया हवा में। तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई, बहुत शर्मा गई और बहुत खुश हो गई। ये जो किशोरी कुंड है इसका और भी लीला है कि यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण ने बहुत बार स्नान किया है, तो कृष्ण के शरीर का कुमकुम चंदन अगुरु ये सब इस जल में मिला हुआ है। तो इसी जगह पर राधा रानी की एक राइवल है, इसका नाम क्या है, चंद्रावली। चंद्रावली की जो एक फ्रेंड है पद्मावती, राधा रानी ने उसका विवाह कृष्ण से यहाँ करवाया अपने आयोजन में, और ललिता देवी को आदेश दिया कि पद्मावती का आप श्रृंगार करो। तो पद्मावती को ललिता देवी ने दुल्हन बनाया और कृष्ण भगवान के बाजू में बिठाया, उनका विवाह संस्कार यहीं पर संपन्न किया। राधा रानी की कृपा से यहाँ पर भगवती गंगा प्रकट हुई है, वो भी मुझे ढूंढना एक दिन कहाँ पर है वो। तो उसके किनारे उस भगवती नदी गंगा जो प्रकट हुई वो कुंड के रूप में प्रकट हुई, उसके किनारे राधा रानी ने यहाँ पारिजात का वृक्ष लगाया, तो कहते आज भी है, और उसको वैशाख महीने में यानी अगले महीने में 2-1.5 महीने के बाद में फूल आते हैं पारिजात के, बहुत सुंदर। तो इस तरह से कहते दुर्वासा मुनि ने यहां पर राधा रानी को वरदान दिया था। एक जगह वो है जहां पर हम लोग ने कीर्तन किया था ना, गेवर कुंड, वहां पर भी ये कथा आती है। और एक जगह ये है जहां पर दुर्वासा मुनि आए थे और राधा रानी को अमृतमय भोजन बनाने का वरदान दिया गया था इसी जगह पर। फिर उसके आगे आप किशोरी कुंड का मंत्र दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ, और एक कहां पर कथा आती है, कृष्ण भगवान एक बार अभिमन्यु बनकर आए घर पे, यहां पर उनके बेटे बनकर आए। मैया को बोला देखो वो जो कृष्ण है ना वो अभिमन्यु बनकर बहुत यहां पर ड्रामेबाजी कर रहा है, तो कहीं वो घर पे आ गया ना संभालना, वो मार्केट में अभी डोल रहा है, मैं देख के आया उसको, इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया। मैं काम पे जा रहा था तो देखा वो जो है मैं बनकर मेरा रूप धारण करके वहां पर आ रहा है, तो लगता है यहाँ पर आ जाएगा वो, संभालना, ऐसे बोल के कृष्ण चले गए। थोड़ी देर बाद में बाजार हाट करके सब्जी वब्जी लेके अभिमन्यु जब आए तो बहन और माँ झाड़ू लेकर तैयार थे, उनको उन्होंने बहुत झाड़ू लगाकर पीटा और भगा दिया उसको। उसके बाद कृष्ण आए इत्मीनान से, तो मैया ने कहा वो आया था, मैंने हमको बहुत पीटा उसको। बोला अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, चलो कोई बात नहीं, कोई कष्ट तो नहीं था ना राधा रानी को? नहीं था, ठीक है मैं उसको जाके पूछता हूँ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ऐसे करके अंदर गए और बहुत देर तक आनंद लिया उन्होंने वहां पर। तो ये कथा प्रभुपाद जी ने भी बताई है, उनके भी किताब में चित्र पड़ा था, अभिमन्यु झाड़ू का मार खा रहे हैं और मैया और बहन उनको मार रही है इस तरह से। तो ये बहुत सुंदर स्थान है। अभी वो जो लीला है ना यहाँ पर बीच वाले इस तरह के दीवार पर, क्या देख रहे हैं आप उसमें? एक बुढ़िया बैठी है, डंडा है क्या उसके पास? नहीं ना, हाँ वो डंडा लेकर बैठती है हमेशा। तो वो कृष्ण भगवान है ना, वो कोकिला वन में आए एक बार, हा? और वो कोकिला वन में आकर बहुत ही व्याकुल हो गए राधा रानी के लिए, और वहां से उन्होंने मुरली बजाई कृष्ण राधा रानी को बुलाने के लिए। तो राधा रानी यहां पर व्याकुल हो गई और तुरंत बाहर निकलने लगी, तो दरवाजे पर जटिला बैठी हुई है, तो कहाँ जा रही हो? पानी भरने जा रही हूँ। अरे अभी तो पानी भर के लाई, अभी क्यों पानी भर, सब पानी घड़े भरे हुए, चलो अंदर जाओ। तो अंदर गई, रोने लगी। अच्छा बाय द वे, विश्वानु महाराज जब महल बनाया था ना तो ललिता विशाखा सब लोग भी यहाँ रहते थे उनके साथ में, तो वो वहाँ ही है, सब लोग के बीच में गोल करके सर झुकाकर ऐसे घुटने में रहकर रोने लगी, पता ना ऐसे सर घुटने में घुसाकर रोने लगी वो, क्या करूँ? और वो मुरली बजाए जा रहे हैं, जैसे मुरली बज रही है ऐसे और व्याकुल हो रही है और रो रही है। और वहां पर सुबल साथ में है कृष्ण के, तो सुबल के साथ में बैठकर वो बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं सुबल को, सुबल वो तो नहीं आ रही है, सुबल वो नहीं आ रही है, सुबल वो नहीं आ रही है, फिर बजा रही है, फिर नहीं आ रही है। फिर वो कहते हैं कि अभी मैं अपने आप को जीवित नहीं रख सकता, ये लो मेरी मुरली और ये रही मेरी गुंजमाला, जब मैं गुजर जाऊंगा उसको भेंट में दे देना राधा रानी को। वैसे करके ऐसे उसके हाथ में गिर जाते हैं, तो उसको बड़ी दया आती है। वो कहते हैं श्याम सुंदर कोई चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा, क्योंकि सुबल है ना उसकी एक विशेषता है कि सुबल बहुत ही, सुबल और उज्जवल दो ऐसे सखा हैं, उनको प्रिय नर्म सखा कहते हैं, मतलब वो सखाओं में भी बहुत ग्रेडेशंस हैं, कुछ छोटे वही के उम्र के हैं। वो कैसे होते पता है आपको? वो जब यशोदा माई नहलाती है ना कृष्ण को, तब ये बड़ी आतुरता से गेट पर खड़े रहते हैं, ऐसे सेवा के आतुरता से, मतलब अभी कुछ सेवा मिलेगी से खड़े रहते हैं। तो मैया कहते आ जा, ये ले तोलिया पकड़, ये शंख पकड़, ये वस्त्र पकड़, वो अलंकार ला के देना। तो वो ऐसे ना निम्न सेवा करते हैं सखा भगवान के, भगवान के श्रृंगार में माता पूछ रही है पायल दो, वो दो, नथनी दो, तो वो सब देते रहते हैं उनको, और जल दो या शंख दो, वहाँ रखो, इधर रखो, ले आओ, ऐसे काम करते हैं। वो छोटे से होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं समवयस्क, यानी श्रीदामा टाइप, वो क्या करते हैं, भगवान को डांटते हैं, उनको कंधे पे चढ़ते हैं, उनके पास कुश्ती खेलते हैं, मारामारी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके नेता सिदामा है। और फिर बड़े वाले ग्वाल बाल होते हैं, जैसे मंडली भद्र, वो हमेशा मैया उनको कहती है, देखो ये बहुत शैतान है, ये उधर कालिया है जमुना जी के अंदर, कहीं वहाँ पास में चला जाए, उनको देखभाल करना उनको। तो ये ऐसे वात्सल्य भाव में थोड़े रहते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं ना, वो तलवार डंडा सब लेके चलते हैं, वो ये भाव में कि हम कृष्ण की रक्षा करेंगे। जैसे बलदाऊ जी को बोलते हैं ना, देखो वो छोटा है, आपका काम रक्षा करना है, तो वो बड़े भाई के अंदर साक्ष्य भी है और वात्सल्य भी है बड़े होने के नाते। वैसे मंडली भद्र वो सब के अंदर वो भी भाव है। और एक सखा होते हैं उज्ज्वल सुबल जैसे, जो ना गोपियों के बहुत निकट रहते हैं, मतलब जब भी कुछ समस्या होती है ना गोपियों कृष्ण के बीच में, तो कृष्ण के साइड से ये दोनों निगोशिएट करते हैं। और जो भी गोपियों से कुछ करवाना है, मैसेज भेजना है, वहाँ का मैसेज यहाँ लाना है, तो गोपियाँ भी उन पर बहुत विश्वास रखती है कि ये ट्रस्टवर्दी है, तो उनके तरफ से मैसेज आता है, यहाँ से मैसेज जाता है। और जो भी कुछ सुलह करना है, कभी कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से ललिता विशाखा, यहाँ सुबल सुबल उज्ज्वल, ऐसे उनका। तो सब सखा सखियों से क्लोज नहीं होते। तो जब भी राधा रानी को मिलने का प्रसंग आता है, तो वो कृष्ण सुबल को लेकर चलते हैं, या उज्ज्वल को लेकर चलते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं। क्योंकि ये राधा रानी को मिलने का जो भाव कृष्ण का है, ये उज्ज्वल सुबल अच्छी तरह समझते हैं, और उस समझ बूझ के साथ में कृष्ण को सांत्वना करते हुए काम करते हैं। बाकी सारे ताने मारते हैं, देखा ना आपने कैसे, हाँ देखा हमने तुम्हारी छलनी जैसी अवस्था, अगर वो देख लेते तो हंस लेते आपको, ये मूड वाले लोगों को कैसे बोल सकते, वो तो ताने ही मारेंगे ना उनको। तो ये सुबल उज्ज्वल उस कैटेगरी के हैं, एकदम प्राइवेट एंड क्लोजेस्ट। जब भी कोई एकदम प्राइवेट बात होती है ना, तो वो उनको उनको बता सकते हैं कि। तो सुबल को लेके यहाँ पर आए और रो रहे हैं। और सुबल हमेशा, सुबल का एक वैशिष्ट्य है कि जब भी कोई जघन्य समस्या होती है ना इनके बीच में, तो सुबल ऐसा कुशल व्यक्ति है कि वो कुछ ना कुछ उपाय कर लेता है और मामले को सुलझा लेता है। जैसे राधा रानी की तरफ से ललिता देवी, सुविशाखा देवी है, वहाँ पर कुछ भी समस्या होती है, या कृष्ण ने आतंक कर दिया या कुछ तंग कर दिया, तो ललिता देवी संभाल लेती है सब उस मामले को। और मिलाना भी तो वह संभाल लेती है। कभी अभी देखो, पहले बार मिले तो श्रृंगार किया ललिता कुंड में लेके, बहुत ट्रिक किया उनको, बहुत समय से श्रृंगार बनाया, सखी बनाया, और काजल लगा के ले गए दुल्हन बनाकर छुप छुप के, फिर घूंघट उतार कर ले गए महल तक ले गए, बोले उपनंद की बहू है ना। तो वैसे ये मीडिएटर्स होते हैं। तो सुबल कह रहा है, चिंता मत करना मैं कुछ करूँगा। जाने लगा तो दोबारा मुरली बजाई, और इस बार तो ऐसे बेहोश होके गिर गए, तो उन्होंने गोद में लिया अपने कृष्ण को, देला है, चिंता मत कर श्याम सुंदर, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। अभी देखा कि बहुत गंभीर हो रहा है मामला। तो सुबल जी निकले और ऐसे ना खोए खोए से आ गए यहां पर। खोए क्या मतलब, ऐसे तो रास्ता भटक गया है या तो कुछ खो गया है उसका, दोनों में से एक। तो खोते खोते जानबूझ के ललिता के जटिला के सामने से ही आगे पीछे कर रहा है, कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, राइट में लेफ्ट में, चेहरा लाल हो गया उसका। होता है ना, देखो अभी आप समझो गर्मी सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, तो आप धूप में जाएंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, एंड यू विल बिकम डार्क देन अदर सीजन, क्योंकि आप बार बार धूप में जाते हो। तो ये बेचारा धूप में चल के आ रहा है, तो भी थोड़ा सा लाल थका हुआ सा हो गया। तो कह रहे, अरे सुबल क्या कर रहे हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि पता है ना सो कृष्ण का मित्र है ना वो। नहीं मैया, मेरा बछड़ा खो गया है, तो इधर बछड़ा बछड़ा कुछ नहीं आया है, चले जाओ यहाँ से। मैया प्यास लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, अरे किशोरी इसे जल पिलाओ, जाओ 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 अंदर, जल जल पी के आओ। तो उसको जाना वही था अंदर, चला गया अंदर सीधे। तो राधा रानी बैठकर रो रही है, सब सखियां रो रही है, लेकिन सुबल को देखकर बड़ा आनंद आता है उनको। तो वो कहती है, मैं तो अभी प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैया तुम्हें छोड़ ही नहीं रही है, कब से प्रयास कर रहे हैं, पानी का बहाना किया, ये बहाना किया, नहीं छोड़ रही है, दरवाजे पे बैठी है। तो सुबल कहता है कि कुछ चिंता मत करना, मेरे मन में एक बहुत सुंदर आइडिया है। क्योंकि सुबल का और एक वैशिष्ट है, सुबल का चेहरा राधा रानी से मिलता जुलता है, लुक्स लाइक राधा रानी ओनली, ऑल फीचर्स। तो कहते कि आप मेरा वस्त्र पहनो और सुबल बन के जाओ, और मैं आपके वस्त्र पहन के राधा रानी बन के यहाँ बैठूंगा। तो कहते हैं बहुत अच्छी आइडिया है, और वह बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बहुत वेरी हैप्पी, कि कितना सुंदर आइडिया निकाला उन्होंने। लेकिन कहती है राधा रानी की, दो समस्या है इसके अंदर, एक तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं और एक मेरा वक्षस्थल जो है वो यौवन की वजह से बहुत उन्नत है, तो इनको कैसे छुपाऊं मैं। तो कहते कोई बात नहीं, आप मेरा फेटा ले लो और सारे बाल फेटे में बांध दो, और रही वक्ष की बात तो अपने गौशाला से एक बछड़े को उठा लो और छाती में ऐसे पकड़ो उसको, बछड़े को पकड़ना प्रेम से ऐसे, यहाँ पर मुंह है यहाँ पर पूंछ है, ऐसे ऐसे पकड़ के चले जाना। तो फिर राधा रानी अंदर तुरंत, सखियां बहुत एक्साइट हो जाती है, तुरंत वो ड्रेस देखो वहां पर सुबल वो घाघरा पहन रहा है राधा रानी का, राधा रानी धोती और कुर्ता पहन के फेटा पहन के बाल उसमें बांध के फेटे में, और अपने गौशाला से बालक बछड़े को उठाकर छाती में पकड़ के जा रहे हैं। तो जब ये जा रहे हैं तो मैया पूछ रही, जल पी लियो? हाँ पी लियो मैया, बछड़ा भी मिल गया, आपके ही गौशाला में गया था वो। बोला अच्छा हो गया बहुत, मिल गया ना, अच्छा हो गया बहुत, क्योंकि तो आपने पानी भी नहीं भेजा, मैंने भी चेक कर लिया गौशाला में जाके, वही मिल गया, ठीक है जाओ अभी आप। तो फिर वो राधा रानी, एक जगह ऐसे कहा है कि अंदर डिसीजन होता है अंदर, कि आप अभी आवाज की प्रॉब्लम है तो मैया पहचान जाएगी, तो मैया पूछेगी तो क्या सुबल बछड़ा मिल गया, तो कहना जल पी लिया, जा रहे हो, ऐसे ही बोलना, बाकी कुछ बोलना नहीं। तो वो ओंकार में ही चले गए राधा रानी। फिर उधर सुबल राधा रानी बैठकर पूरा श्रृंगार करते हैं उसको, और बीच में वैसे ही बिठा लेते हैं। राधा रानी सुबल बनकर जा रही है बछड़े को लेकर, और कृष्ण वहां इंतजार कर रहे हैं, और देखते हैं कि सुबल अकेला आ रहा है। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो ना, सुबल अकेले आ रहे हैं। तो बोले सुबल तू अकेला ही आ गया, मतलब मेरा मृत्यु निश्चित है, अब मुझे मर ही जाना चाहिए, ले मेरी मुरली और गुंजमाला, दे देना उसको स्मृति चिन्ह के रूप में। और वो बेहोश होकर वहां गिर जाते हैं, राधा रानी को रहा जाता है, तुरंत फेटा निकाल लेती है, बछड़े को छोड़ के तुरंत गोद में लेती है, कहते हैं मैं किशोरी ऋषभानु नंदिनी, तो तुरंत कृष्ण जग जाते हैं। फिर कोकिला वन में बहुत सुंदर लीला करते हैं बहुत देर तक। फिर उतने में क्या होता है, घर के पानी के घड़े खाली हो जाते हैं, फिर सब सखियां ललिता विशाखा सुबल जो राधा रानी बनाए हैं सारी सखियां अपना मटका लेके, मैया देखो सब खाली हो गए, जाओ जमुना जी में भर के आओ। तो सब लोग वहां जाते हैं कोकिला वन में, वहां वापस ड्रेस चेंज करते हैं और जमुना जी में जाते हैं, जल भरते हैं, और राधा रानी वापस राधा रानी बन के घड़े भर के पानी भर के लौट के आते हैं। ऐसा कोकिला वन का और यहाँ का लीला है। तभी हम कोकिला वन जाएंगे, शायद कुछ लोगों का दर्शन नहीं होगा तो कथा भी यहाँ बता देते हैं, तो अच्छा रहेगा ना, कथा रूप में आप वहां जा सकते हो। सबसे पहले कोकिला वन को प्रणाम कर लो, देवर्षि किन्नरा किरण कोकिला निर्मिताय च वनाय आह्लाद पूर्णाय नमस्ते सुस्वर प्रद। देवर्षि किन्नरा किरण कोकिला निर्मिताय च वनाय आह्लाद पूर्णाय नमस्ते सुस्वर प्रद। कोकिला जैसे सुमधुर स्वर को प्रदान करने वाले देवर्षि किन्नर आदि महान जनों से भी युक्त परम आह्लाद से पूर्ण कोकिला द्वारा बनाए गए इस कोकिला वन को प्रणाम है। मतलब अभी आप जानते हैं ना, सब देवर्षि जितने भी होते हैं ना देव लोक में रहने वाले, वो गाने में बजाने में और बहुत सुंदर ध्वनि निकालने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आकर शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर श्री कृष्ण कोयल बनकर अपनी आवाज निकालते हैं। तो ऐसे जहां पर श्री कृष्ण कोकिल बनकर सुंदर ध्वनि निर्माण करते हैं उसका नाम कोकिलावन है, ऐसे कोकिलावन को हम प्रणाम करते हैं। जावटेर पश्चिमे ए वन मनोहर लक्ष लक्ष जावटेर पश्चिमे ए वन मनोहर लक्ष लक्ष कोकिले कुहरे निरंतर। भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका वर्णन किया है। यावट के पश्चिम में केवल 1-2 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है जहां पर अनेक कोकिल कोकिल जो है वो अपना कुहू कुहू आवाज निकालते हैं। एक दिन कृष्ण एई वने ते आशिया, एक दिन कृष्ण यहां पर आए और एक पेड़ पर चढ़े और उन्होंने कोयल बन कोयल की जैसी आवाज शुरू किया और सुंदर सुंदर कोयल की आवाज में सुंदर सुंदर रागों में गाने लगे। तो जटिला बहुत प्रसन्न हो गई सुनकर। अंदर से राधा रानी और सखियां बाहर भाग के आई, कही मैया आप सुन रही हो कितने सुंदर कोयल की आवाज आ रही है। तो मैया भी कहती हाँ मैंने भी बहुत कोयल की आवाज सुनी है लेकिन ऐसे कोयल की आवाज कभी नहीं सुनी है और खुद भी मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। तो मैया हम जाके उस कोयल को देख के आए, जाओ जाओ पता नहीं वापस कभी आएगा। सब जा सखियां जाके कृष्ण को मिल के आती है। तो ऐसा एक कोकिला बने जहाँ पर भगवान कभी कोकिला जैसा आवाज निकालते हैं तो कभी कोकिल स्वयं बन जाते हैं और राधा रानी कोकिला बनकर वहां पर साथ में उनका जो क्या कहते हैं डुएट द्वंद्व गीत गाते हैं। कोकिला वन बहुत सुंदर जगह है, जैसे संगीत जगह है ना वैसे कोकिला वन है। वहां पर कोकिल कोकिल और कोकिला बनकर वो दोनों सुंदर सुंदर सुमधुर गीत गाते हैं, संगीतमय उनकी मुलाकात होती है। अभी एक छोटी सी लीला है उसके बाद हम अपना प्रवचन समाप्त करेंगे। ओके, कोकिला वन में रत्नाकर कुंड है। वो रत्नाकर कुंड गोपियों ने अपने घर से लाखों गायों का दूध लाकर बनाया था और उस कुंड में से बहुत रत्न उत्पन्न हुए जिन रत्नों से राधा और गोपी अपना श्रृंगार करके कृष्ण को मिलने जाती थी, इसलिए उसका नाम रत्नाकर कुंड पड़ा है। वो कहते हैं वहां पर पहुंचने से और वहां पर आचमन करने से सब लोग बड़े धनी बन जाते हैं, रत्नों की प्राप्ति करके धनी हो जाते हैं। दे बिकम रिच, मतलब उनको दुनिया की दौलत प्राप्त होती है लेकिन सबसे कीमती रत्न भी प्राप्त हो जाता है। वो क्या है? प्रेम और भक्ति का रत्न, वो भी प्राप्त हो जाता है। उसकी प्रार्थना करेंगे सब लोग। सख्याः क्षीर समुद्भूत रत्नाकर सरोवरे नाना प्रकार रत्नानां उद्भवे वरदे नमः। सख्याः क्षीर समुद्भूत रत्नाकर सरोवरे नाना प्रकार रत्नानां उद्भवे वरदे नमः। सखियों ने क्षीर सम उद्भूत में नहीं साथ में मिलकर इसको उद्भव उद्भव किया है, निर्माण किया है जिसका नाम रत्नाकर सरोवर है। अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं और ऐसे अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न करने वाले कुंड को हम प्रणाम करते हैं। वहां पर सुंदर रास मंडल है क्योंकि वो कोकिला वन राधा और कृष्ण का रास स्थली भी है। वहां पर आके कई बार रास स्थली रास रचाया गया है, विरह स्थली भी है, उसकी कथा मैं बताऊंगा आपको। बोलिए सब लोग, रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय गोपी रमण सुंदर नमः सुख मनोरम्य नमः सुख मनोरम्य स्थलाय सिद्धि रूपिणे स्थलाय सिद्धि रूपिणे। रास क्रीड़ा करने के लिए ये कुंड कुंड हमको प्रदीप्त करता है, यानी क्या कहते हैं एनलाइवन एनकरेज्ड। गोपी रमण सुंदर, गोपियों का रमण सुंदर भगवान यहाँ पर करते हैं गोपियों के साथ, तो ये बहुत मनोरम्य स्थल है, सुख देने वाला है, इसको हम प्रणाम करते हैं और वो परम सिद्धियों को भी प्राप्त कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रासलीला करने के बाद में कृष्ण और गोपियों ने यहाँ पर जलपान भी किया है बीच में विश्राम लेते हुए। तो कहानी ऐसी है कि आप लोग तो वहाँ गए नहीं काम्य वन में, लेकिन काम्य वन में एक सुंदर स्थान है चरण पहाड़ी जहाँ पर भगवान ने मुरली बजाई थी, उनके चरणों के चिन्ह पर्वत पिघलने की वजह से उत्पन्न हुए थे। तो वहाँ पर मुरली बजाई तो उसके बाद में गोपियाँ व्याकुल हुई और वो वहाँ पर आई और फिर भगवान ने चरण पहाड़ी पे क्या किया, रासलीला रचाया। वहाँ पर से कृष्ण भगवान नंदगांव और बरसाने में आए और वहाँ पर रास किया। आप खड़े हो जाओ प्रभु जी। वहाँ पर उन्होंने रास किया और जब गोपियों को गर्व हुआ बरसाने में तो कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए। और केवल राधा रानी को लेकर चले गए। तो राधा रानी को लेकर उन्होंने कहाँ कहाँ गए, राधा रानी को लेकर वो संकेत वन आए। संकेत वन में उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया। मैं थोड़ा संक्षेप बता रहा हूँ, बहुत सुंदर कथा है। राधा कृष्ण संकेत वन में आए, दोनों का अपने आप श्रृंगार किया, परस्पर श्रृंगार। फिर भद्रवन गए, फिर खदीरवन गए। भद्रवन में क्या है मुझे पता नहीं, अभी तक वहाँ गए नहीं हूँ। खदीरवन में बकासुर का वध हुआ था, लेकिन वो रासलीला लीला स्थली भी है, गौचारण स्थली भी है। वहाँ पर भगवान अपने गायों को पानी पिलाते हैं। उपनंद बाबा का गांव है वो खदीरवन। फिर वहाँ से बेलवन गए। बेलवन क्या है, बेलवन बिल्ववन कहते हैं उसको। वहाँ पर लक्ष्मी जी रास में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए रास में प्रवेश मिलिए, मिलना चाहिए, इसलिए तपस्या कर रही हैं, क्योंकि वो अपना ऐश्वर्य भाव छोड़ नहीं पाई। उनको कहा गया था कि आप को गोपी बनना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, गोबर ढोना पड़ेगा, कंडे बनाने पड़ेंगे। तो मैं नहीं कर सकती, मैं तो लक्ष्मी हूँ। तो ठीक है फिर, हरे कृष्णा। क्या करें, यहाँ का एप्लीकेशन इस तरह का होता है। हर कॉलेज का अपना होता है ना एप्लीकेशन क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो नहीं कर सकती। तो फिर वो सोचे कि तपस्या करके मैं अंदर प्रवेश करूँगी, लेकिन प्रवेश नहीं मिला उसको। ठीक है, तो वो बेलवन। तो कहाँ कहाँ गए वो बताइए, श्रृंगार कहाँ किया, संकेत वन, भद्रवन, खदीरवन, बेलवन में जाकर फिर वो कोकिला बनाए, राधा और कृष्ण अकेले। तो कोकिला अपने बैठकर बातें कर रहे थे, तो क्या हुआ, प्राधारण ने कही कि आपने मुझे कितना चलाया, चरणपाड़ी कहाँ, नंदगांव बरसाना कहाँ, संकेत कहाँ, कोकिलावन इतना चलाया, मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं कभी पैदल नहीं चलती, मैं बहुत थक गई हूँ। भद्रवन तो जमुना पार है, भांडीरवन जमुना पार है, अरे बहुत दूर है सब, बेलवन भी जमुना पार है, खदीरवन इस तरफ है। फिर बहुत बहुत दूर तक चलाया, अकेले चल रहे, आनंद ले रहे। तो राधारानी कहती है मैं थक गई हूँ। तो कृष्ण कहते हैं मेरे कंधे पर चढ़ो। तो कहते मैं थक गई हूँ, मैं नहीं चढ़ सकती, मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं इतना श्रम नहीं कर सकती। तो कृष्ण ने समझा कि थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं उसको, मान हो गया है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण खुद झुक गए, और वो कंधे पर बैठने ही वाली थी तो कृष्ण अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और उसी समय वहाँ से रोती रोती बिलखती बिलखती गोपियाँ सब आ रही थी चरण पहाड़ी से, रोते रोते कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए, वेलियों को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं बहुत। और उतने में कृष्ण अंतर्धान हो गए, तो राधा रानी व्याकुल हो गई, वो आक्रोश करने लगी कि मैंने क्यों मान किया, अपने आप बैठ जाती कंधे पर तो साथ में रहती उनके। तो राधा रानी आक्रोश करने लगी, तो उनकी आवाज़ पहचान कर गोपियाँ वहाँ भाग के आई, सर यही कृष्ण होंगे। देखते हैं कि राधा रानी भी अकेली है, पहले उनको पता था कि वो कृष्ण के साथ चली गई है, अब देख रहे हैं वो खुद रो रही है। तो उन्होंने कहते हैं उनको ना, वो था ना हनी, हनी कमिंग फ्रॉम फ्लावर्स, उनसे उनका अभिषेक किया उन्होंने, उनको शांत सांत्वना करने के लिए। लेकिन जैसे कृष्ण अंतर्धान हो गए, उनका मान उतर गया, आक्रोश किया, गोपियाँ पहुंची वहां पर। राधा ने फिर, कृष्ण ने कैसा सम्मान किया मेरा, कैसे मुझे क्या कहते हैं ना पैम्पर किया, श्रृंगार किया, मैं मुझे हाथ पकड़ के चलाया, डांस किया, रास रचाया, प्राइवेट वन टू वन रासलीला रचाई, संकेत में, खदीरवन में, बेलवन में पूरा वर्णन किया, कैसे मुझे कृष्ण ने प्रेम दिया। पुष्प मकरंद अगुरु कस्तूरी चंदन और केसर जल से उनका अभिषेक किया गोपियों ने। फिर राधा के साथ गोपियों ने कृष्ण को पुकारा है, सब लोगों की पुकार सुनकर कृष्ण वहां प्रकट हो गए कोकिलावन में। और फिर दोबारा सब गोपियों के साथ भगवान ने कोकिलावन में अनंत रूप धारण करके रासलीला रचाई और गोपियों को संतुष्ट किया। उसके बाद में रत्नाकर कुंड से जल पिया। अभी हमारे आचार्य इसका एक रहस्य बताते हैं कि राधा रानी ने यह मान क्यों किया, क्योंकि गोपियों का विरह देखकर, क्योंकि वहां बैठे थे ना वो सुन रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी को, चलो हम निकलते हैं यहाँ से, अभी गोपियाँ आने वाली हैं। और गोपियों की रोने की आवाज़, आक्रोश की आवाज़, पुकार की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे पास आ रही थी, तो ये दोनों सुन रहे हैं। तो कहते हैं राधा रानी का मन व्याकुल हो गया कि मैं अकेले कृष्ण के साथ हूँ, मेरी सारी सखियाँ तड़प रही हैं। तो उन्होंने मान का नाटक किया और कृष्ण को अंतर्धान करवाया और वो सांत्वना देने के लिए सखियों के पास गई है, इतनी ज्यादा करुणामयी है, इसका ये प्रमाण है। फिर उसने क्या किया, इस तरह से वहां पर कार्य किया कि सबको कृष्ण को बुलवाने के लिए ऐसी घटनाएं, ऐसे क्या किया, उनको प्रवृत्त किया कि फिर कृष्ण को लेकर आई। वो गई उनके पास, उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर बताया आपको बातें क्या क्या हुई, और फिर क्या हुआ, महारास हुआ वहां पर, कृष्ण को उनको मिलाया उन्होंने विरह के बाद में। तो जब ये रास समाप्त हुआ ना, तो गोपियां बता रही हैं कि आप जब चले गए थे ना तो हमको कितना विरह हुआ। देखो उसका एक सुंदर श्लोक है, आप बताता हूँ लास्ट में। सौदास राज महिषी विरहा तीव जातम सहस्त्रगुणितम नलपट्ट राज्ञा तस्मात्तु कोटिगुणितम जनकात्मजा यास्त यास्त यास्तस्माद अनंत मति दुखमलम हरे नहा। क्या उसका अर्थ है कि वो सौदास राजा था, एक सौदास राजा, नल और दमयंती का नाम सुना ना आपने, नल दमयंती, तो दमयंती को नल के विरह में जो अनुभूति हुई थी, नल राजा जब चले गए थे, तो उससे तस्मात कोटि गुणातीतम, यानी उससे कोटि गुना विरह का दुख सीता देवी को हुआ जब वो कृष्ण राम जी से विरह में गई, मतलब वनवास में चली गई, अकेली थी, तो नल दमयंती का जो विरह का दुख था उससे कोटि गुणित दुख जो है वो सीता देवी को हुआ, और उससे भी अनंत गुना दुख हमें हुआ जब आप हमसे अलग हो गए। ऐसे गोपियां कृष्ण को समझा रही है। राजा सौदास वशिष्ठ मुनि के शाप से ब्रह्म राक्षस बन गया, तब उसकी पत्नी मदयंती को बहुत दुख हुआ, अपार दुख हुआ, उससे 1000 गुना दुख नल की पत्नी दमयंती को हुआ था, उससे कोटि गुना दुख सीता को श्री राम के विरह में हुआ था, उससे भी अनंत गुना दुख हे कृष्ण हम गोपियों ब्रज गोपियों को हुआ है। ऐसे गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में वर्णन आता है। फिर उसके बाद में कृष्ण सांत्वना देते हैं, तो फिर गोपी पूछते हैं कि आप कहाँ चले गए थे, जब वो राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए ना, तो पूछ रहे थे अभी कहाँ चले गए थे आप, तो कृष्ण कहते हैं मैं पुष्कर द्वीप में हंस मुनि को बचाने गया था। वो कौन है हंस मुनि, तो कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान ने अपना 8 भुजा वाला रूप धारण किया और राधा लक्ष्मी बनी और उनको दर्शन दिया, कहाँ पर, पुष्कर द्वीप में। फिर उसके बाद में कृष्ण यमुना गए और उन्होंने पीताम्बर बांसुरी छड़ी ये सब राधा रानी ने छीन लिया, फिर राधा रानी ने, सॉरी मैं आपको क्या बता रहा था कि पुष्कर द्वीप में वो हंस मुनि को बचाने गए थे, ऐसे उन्होंने कहा। इसके बाद में उन्होंने गोपियों को अपना अष्टभुजाधारी शेषशायी स्वरूप दिखाया है, राधा रानी की लक्ष्मी बन गई है। उसके बाद कृष्ण यमुना गए हैं और उन्होंने गोपियों ने उनका पीताम्बर छड़ी और बांसुरी छीन लिया, फिर राधा रानी का शॉल और उनके हाथ में एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल था वो उन्होंने छीन लिया और वो जल में भाग गए कृष्ण भगवान। फिर राधा रानी भी जल में घुसी उनके हाथ से कमल छीनने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे कमल दे दो, तो कृष्ण कहते पहले मुरली दे दो। फिर बहुत झगड़े होते हैं पानी के अंदर, फिर उसके बाद में राधा रानी को अपनी शॉल और कमल भगवान लौटा देते हैं और उनकी मुरली और छड़ी राधा रानी लौटा देती है, और उसके बाद में कृष्ण वैजयंती माला पहनते हैं और फिर वो सब भांडीर बन जाते हैं और रास सजाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कोकिलावन धाम की जय, जावट धाम की। एक कथा रह गई लास्ट, मैं बता देता हूँ। कोकिलावन में शनि महाराज को कृष्ण भगवान ने आश्रय दिया है, एक दो मिनट बता देता हूँ। तो वो ऐसा था कि शनि देव, ये किसके पुत्र हैं, सूर्य देव के पुत्र हैं, तीसरे, पहले यमराज, दूसरे यमुना, दूसरे शनि देव। शनि देव जन्म से ही बड़े विरक्त और शुद्ध भक्त थे भगवान के, इतने थे कि वो हमेशा मग्न ही रहा करते थे राधा कृष्ण के भाव में। तो पिताजी माताजी थोड़े से सोचे ये इसका क्या करें, इसको विवाह करना चाहिए क्योंकि इतने मग्न रहता है। तो उसका एक सुंदर कन्या से विवाह किया गया, विवाह करने के बाद भी ये नहीं सुधरे, कभी वो देखते नहीं थे अपनी पत्नी को, संग वंग दूर की बात है। पत्नी अभी शादी करके तो कुछ ना कुछ तो अपेक्षा करेगी ना, संग होगा, बात करेंगे, तो इनको तो रुचि नहीं उसके अंदर। तो पत्नी उनसे एक बार बहुत क्रोधित हो गई, शाप दे दिया कि तुम मुझे देखते नहीं हो, मेरी तरफ ताकते भी नहीं हो, मैं आपको शाप देती हूं कि अगर किसी को आप ताकेंगे, देखेंगे, तो उस व्यक्ति की गर्दन कट हो जाएगी। मतलब मुझे देखो, ये उसके अंदर मैसेज है। और मेरे अलावा किसी को देखोगे अभी इसके बाद, मुझे देखते नहीं हो, तो व्यक्ति का सर कट जाएगा। तो उसके बाद तो ये ऊपर देखने का काम ही बंद। पहले तो देखते भी थे ऊपर थोड़ा सा, लेकिन अभी ऊपर ही देखते नहीं, क्योंकि किसी का नजर पड़ गया किसी के ऊपर तो उसका सर तो कटना ही है। तो और ज्यादा वो क्या कहते हैं ना उसको, वो मग्न हो गया, विरक्त, मतलब अंतर्मुख हो गए, वो किसी को देखते हैं, सबको नीचे देखते हैं हमेशा। अब भी आएंगे तो नीचे से बात करेंगे ऐसे। तो फिर यथावकाश जो है ना, वो पार्वती को गणेश जी का प्राप्ति हुई, जन्म हुआ गणेश जी का। पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर महोत्सव आयोजित किया अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में, सबको बुलाया, तो उसमें शनिदेव को भी बुलाया, और शनिदेव आए तो जमीन भी देख रहे हैं, सब ने अपने, तब तक तो गणेश बने नहीं थे वो, तब तक तो पार्वती पुत्र ही थे वो, सबने आशीर्वाद दिया पार्वती पुत्र को, और ये अकेले नीचे देख रहे हैं। तो बार बार पार्वती गोद में लिए बालक को कह रही है, ओ शनि महाराज आशीर्वाद दो मेरे बालक को, देखो इतना सुंदर बालक है मेरा। वो कह रहा है कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, कुछ बताया नहीं, लेकिन वो अपना जो व्यवस्था है वो व्यक्त कर रहे हैं। फिर पार्वती ने बहुत गुस्से से आदेश दिया, अगर आप मेरे बालक को नहीं देखोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो मजबूर हो गए वो, जब सर उठा के देखा तो बच्चे का सर है ना, ऐसे पता नहीं कहाँ उड़ गया, वो कौन से लोक में चला गया, इतना दूर उड़ गया वो कि आंखों के सामने आप देख रहे हो, मैया के गोद में बालक है, उसका शीश इतना दूर उड़ गया और खून से लथपथ हो गया, और मृत शरीर उनके गोद में है। तो सब हाहाकार मच गया अचानक। तो फिर शिव जी ने जाकर हाथी का सर लेके आए, बालक को लगाया, तभी पार्वती बिलक बिलक के रो रही है। शिव जी समझा रहे हैं, अरे तो वो ठीक हो गया है, वो जीवित हो गया है, फिर भी वो रो ही रही है, उसको तो वो मतलब इतनी दुख में थी कि वो आगे का सुन ही नहीं पा रही थी। फिर बहुत देर सांत्वना करके उसको, बालक को दर्शन कराया, तो उसको देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई वो। तो शनिदेव इस वन में निवास करते हैं, शनिदेव बुरे नहीं होते हैं, भगवान के भक्त हैं। जो भगवान के भक्त नहीं होते ना, उनको वो कष्ट देते हैं, और उनको भी कष्ट देते हैं, मतलब बुरा नहीं करते हैं, लेकिन स्थिति ऐसे निर्माण करते हैं कि उस स्थिति में हम लोग बुरा कार्य करते हैं। समझो बहुत दुख आया तो कोई शराब पी लेगा, कोई नशा कर लेगा, कोई गलत काम कर लेगा, कोई ऐसे व्यभिचार कर लेगा बहलाने के लिए अपने आप को, कष्ट होता है बहुत, लेकिन कष्ट में अगर हम डटे रहेंगे भगवान की भक्ति में, तो फिर उसका परिणाम नहीं होता है हमारे ऊपर। और जैसे हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, तो शनि महाराज का परिणाम भी सब कम हो जाता है, इफेक्टिवली इफेक्टिविटी ऑफ शनि दशा इज रिड्यूस्ड। तो भक्त लोग जो है शनि को ग्रह के रूप में देखते नहीं है, भक्त लोग शनि को शुद्ध भक्त वैष्णव के रूप में देखते हैं, जैसे वास्तु पुरुष को बाकी लोग राक्षस के रूप में देखते हैं, और हम लोग उनको महापुरुष के रूप में देखते हैं, महाभागवत के रूप में देखते हैं। हम लोग वास्तु शांति नहीं करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं। तो शनिदेव को यहीं से प्रणाम कर लो और विनती करो कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ, जो भी कष्ट आएंगे आपकी दशा में वो भगवान की सेवा में हमको अधिक प्रवृत्त करें, अधिक पुकारने को मजबूर करें भगवान को, अधिक उनका ध्यान बढ़े। शनिदेव बड़े दयालु हैं, उनसे आप प्रार्थना करो। कोकिलावन को आपने नमस्कार किया ही है, कोकिलावन से प्रार्थना करो राधा कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो, आसक्ति उत्पन्न हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।